ओम शांति। आज का जो टॉपिक जो है कि 2000 या 2001 या 2005 इस प्रकार की जो भी बातें जो है उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में टॉपिक रखा हो गया था और मुझे उसके ऊपर कहने के लिए कहा गया था। तो वो टॉपिक जो है वही टॉपिक सबको बहुत अच्छा लगा था और उसमें कई बातें भी जो हुई थी वो भी सबको बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो यही है, कई लोग इसके बारे में सोचते हैं कि क्या होगा। बाबा भी इस टॉपिक पर पिछले 2-3 अव्यक्त मुरलियों में भी बता चुके हैं कि इनका इंतजार मत करो, समय का इंतजार मत करो। समय तो आपकी रचना है, आप समय के मालिक हैं। इसलिए इंतजार करने के बदले में उसका इंतजाम कीजिए। इस प्रकार की बातें बाबा ने कही हुई है और इसके आधार पर सभी ने अपना जीवन का लक्ष्य भी जो है कैसे 2000 में क्या होगा, 2001 में क्या होगा, कब विनाश होगा, विनाश की तारीख तिथि उसका इंतजार करने के बदले में जो भी आने वाला होगा उसके लिए, क्योंकि बाबा ने पिछले वर्ष भी एक संदेश में बाबा ने बताया भी था ऊपर अव्यक्त वतन में कि हमारे 5 तत्व जो है वो भी सूक्ष्म रूप में वहां पर मौजूद थे। तो हमारे जो एडवांस पार्टी में गए हुए साथी जो है वो भी वहां पर थे और सभी ये पूछ रहे थे कि विनाश कब होगा, हमारा तो ये कोई हिसाब किताब नहीं है, तो इसलिए कब हो सकता है। तो उसके बारे में मोहिनी बहन को जब पूछा गया कि सब तैयार है अचानक का पेपर के लिए, तो मोहिनी बहन ने कहा था कि बाबा को, अव्यक्त बाप दादा को ऊपर सूक्ष्म वतन में कि मैं औरों का पुरुषार्थ तो नहीं जानती हूँ, मैं अपने लिए तो तैयार हूँ, बाकी औरों के पुरुषार्थ के लिए तो आप दादियों को पूछो। तो बाबा ने दादियों को इमर्ज किया और दादियों को पूछा कि सब अचानक के पेपर के लिए तैयार है या नहीं। तो आप जानते हैं हमारी दादी बहुत अच्छी वकील भी है, तो इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर हम सबकी ओर से जवाब दे दिया कि सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तैयार है, इसलिए कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सब आगे पीछे जो भी है सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तैयार है। कोई 0 नंबर पर तैयार है तो कोई 100 नंबर पर तैयार है। तो इसलिए ऐसी बात जो है कि बाबा भी इंतजार करते रहते हैं कि कब बच्चे तैयार हो जाए, समय भी हमारा इंतजार कर रहा है। और इसलिए ही बाबा ने जो पिछले साल जो कहा, एक ही शब्द जो 3 बार रिपीट किया, सफल करो, सफल करो और सफल करो। उस दिन से हमने देखा है कि अपने दैवी परिवार के अंदर काफी बहन भाइयों के अंदर इस बात के लिए लक्ष्य है कि जो भी है अपना, चाहे तन चाहे मन या चाहे धन है, जो भी है अपने तन मन धन को सफल करने के अंदर लगे हुए हैं और इसी के कारण उनके पुरुषार्थ के अंदर भी उसकी रफ्तार जो है वो रफ्तार भी जो है उसका उनके अंदर का उमंग उत्साह जो है, ये उमंग उत्साह जो है वो भी बहुत ही अच्छा हो गया है। और हम देखते भी है क्योंकि हमारे पास तो कई लोगों के हिसाब किताब आता है, कई लोगों के मकानों की खरीद करने के लिए आदि आदि कई प्रकार की सेवाओं के प्लान्स जो आते हैं रहते हैं, हमारी मीटिंग में भी इसके ऊपर चर्चा होती है। तो ऐसा ही लग रहा है कि सभी जो है अपने तन मन धन को सफल करने में और उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, अर्थात जो बाबा ने समय का इशारा दिया हुआ है, आने वाला समय जो है इतना जल्दी परिवर्तित हो जाएगा उसके बारे में आप जानते भी हैं। अभी भी जो 31 दिसंबर को बाबा ने कहा कि ये काम करना है, हर एक जोन को, हर एक विदेश के बहन भाइयों को सबको काम दिया और काम देकर के कहा कि इसका रिजल्ट जो है वो 31 मार्च तक आना चाहिए और सेवा क्या इसका जो VIPs की सेवा है आदि आदि करने के लिए जो बातें कही और जो पुरुषार्थ करने का टाइम है वो 3 महीने का दिया। तो एक भाई ने मुझे पूछा भी सही कि पहले तो बाबा 1 वर्ष का समय देते थे, जैसे आप जानते हैं हार्मनी वर्ष, उसके पहले तपस्या वर्ष था, उसके बाद में ये डायमंड जुबिली का वर्ष था, डायमंड वर्ष, हरेक को डायमंड जैसा बेदाग डायमंड बनना है। तो ऐसे डायमंड वर्ष या हार्मनी वर्ष, तपस्या वर्ष आदि आदि जितने भी वर्ष बीत गए उन सभी वर्षों के लिए बाबा ने 12 महीने का टाइम दिया और इस बार पहली बार जो भी बाबा ने सेवा बताई उसके आधार पर कहा कि इसका रिजल्ट जो है वो 31 मार्च तक सबको पुरुषार्थ करने का मार्जिन दिया। तो वो भाई मुझे पूछ रहा था कि पहले तो बाबा 12 महीने का टाइम देते थे पुरुषार्थ करने के लिए और अभी 3 महीने का क्यों। हमने कहा यही तो बात है कि आस्ते आस्ते जितना जितना समय नजदीक आता जाएगा, जितना जितना समय नजदीक आता जाएगा इतना इतना समय का जो मार्जिन जो है पुरुषार्थ करने का वो कम होता जाएगा। अभी तो बाबा ने 3 महीने का टाइम दिया, आगे चल करके शायद 1 महीने का कोई भी बात करने के लिए 1 महीने में काम करना है, उसके बाद आगे चल करके शायद 7 दिन का टाइम देंगे, उसके बाद 3 दिन का देंगे और आखिर की जो परीक्षा जो है, बाबा ने प्रश्न पत्र भी बता दिया है कि आखिर की परीक्षा में नष्टो मोहा और स्मृति लब्ध्वा और उसके कारण जो परीक्षा आने वाली है वो 1 सेकंड की भी हो सकती है और उस 1 सेकंड की परीक्षा के लिए बाबा ने बता ही दिया है कि उस 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास होगा वो बिंदीधारी बनेगा और जो फेल होगा वो चिंदीधारी बनेगा। बिंदी और चिंदी के बीच का फर्क भी जो है बाबा ने बताया कि बिंदीधारी जो है कल्प वृक्ष के अंदर चित्र में बताया हुआ है कि लक्ष्मी जो है लक्ष्मी नारायण के अंदर जो उसका फोटो है उसमें जो लक्ष्मी जो है वो बिंदीधारी है और जो सीता राम सीता के अंदर सीता जो है उसके ऊपर चिंदी जो है खास करके राजस्थान आदि में वो खास पहनते हैं बहनें जो यहाँ से ऐसा लटका होती है बीच के अंदर वो पहनती है बीच में सिर के ऊपर में तो उसके चिंदीधारी कहते हैं तो आभूषण के रूप में गाया जाता है। तो बिंदी और चिंदी अर्थात सतयुगी या त्रेता युगी की परीक्षा जो अंतिम परीक्षा जो होगी वो 1 सेकंड की परीक्षा होगी और उस 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास होगा वो सूर्यवंशी घराने का और जो फेल होगा वो चंद्रवंशी घराने का होगा। ऐसी ही बात होती है जितनी जितनी सूक्ष्म जैसे IAS आदि की एग्जाम होती है और उसके अंदर जब युवा वोकल अर्थात सम्मुख में प्रश्नोत्तर का इंटरव्यू होता है उसमें छोटी छोटी बातों के आधार पर ही प्रश्न पूछा जाता है और उसमें जो पास होता है वो पास गिनती उसको IAS की पोस्ट मिलती है, डिग्री मिलती है, पोजीशन मिलती है और जो फेल होता है उसको फेल ही गिनती करते हैं। तो उस प्रकार से अंतिम परीक्षा के लिए हम सबको अपने जीवन का व्यवहार का पुरुषार्थ का उसकी तैयारी करनी चाहिए। कहीं पूछते हैं कि विनाश की तारीख कब होगी, बाबा ने तो बता दिया कि आप जो है आप मालिक है आपके लिए समय रुका हुआ है, बाकी विनाश की तैयारियां जो है वो विनाश की तैयारियां तो हो चुकी है काफी समय से हो चुकी है। मुझे याद है 1963 के अंदर जब भारत और चाइना की बीच में खिटपिटे हुई थी और चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया हुआ था और भारत का सैन्य जो है मिलिट्री जो है बुरी तरह से उस साइड में हार गया था और अचानक उसके बाद चाइना वालों ने अपना जो अपने सैनिक जो है उनको रोक दिया था कि आगे अभी भारत के वहां जाना नहीं है। तो उस समय पर 1963 की बात है उस समय पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने भारत सरकार को एक बात की ऑफर किया था जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक अम्ब्रेला अर्थात भारत को एटम बॉम्ब की छत्रछाया दी जाए कि भारत के ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो भारत की सुरक्षा के लिए अमेरिका एटॉमिक बॉम्ब आदि के द्वारा उसको मदद करेगा। तो उसी समय पर एटॉमिक एनर्जी के जो वहां के बड़े जो थे वो भारत में आए हुए थे, भारत के पास क्या क्या तैयारियां हैं क्या क्या अस्त्र शस्त्र है साधन क्या है उसके बारे में जांच करने के लिए। तो दिल्ली में उनसे अपने बहन भाई मिले हुए थे और 3-4 दिन वो दिल्ली में अपने सेवा केंद्र पर गए और बाद में उनका बॉम्बे में आना हुआ क्योंकि बॉम्बे में भी एटॉमिक एनर्जी का बहुत बड़ा कारोबार चलता है तो इसलिए वो बॉम्बे में आए हुए थे। तो दिल्ली वालों ने हमको कहा था फोन करके कि आप ये भाई जो है उसको बहुत ही इच्छा है अपनी ज्ञान की बातें सुनने के लिए तो उनको हम मिले थे सेवा केंद्र पर भी लेके आए थे। तो उसने उसी टाइम पर भी बताया हुआ था कि एटॉमिक वॉर जो है और उस एटॉमिक वॉर के द्वारा विश्व का विनाश करने के लिए तैयारियां जो है सब कुछ हो चुकी है और उसको उस बात की मन में उसका दुख था कि ऐसे विश्व का विनाश करने की बातों के लिए मैं क्यों निमित्त बना हूं, मुझे क्यों इस काम के अंदर लगाया हुआ है। उसके पहले भी जॉन अपने जो जॉन फॉस्टर डलेस करके अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उनका भी एक बार इंटरव्यू छपा हुआ था अखबारों में, जो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ही साथ में छपा हुआ था। उसके अंदर भी जॉन फॉस्टर डलेस ने भी उस टाइम पर कहा हुआ था, एक विदेश मंत्री के रूप में उसने उस हैसियत में कहा हुआ था कि थ्री टाइम्स आई टुक दिस वर्ल्ड टू द ब्रीम ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के कंठे तक तीन बार मैं इस सृष्टि को ले गया था, एंड देन आई डिसाइडेड एंड थॉट दैट स्टिल द वर्ल्ड इज नॉट राइप इनफ फॉर डिस्ट्रक्शन एंड देयरफॉर आई विड्रू दिस वर्ल्ड फ्रॉम दैट ब्रीम ऑफ डिस्ट्रक्शन। अर्थात तीन बार मैं विश्व को विनाश के कंठे तक लेके गया, परंतु बाद में मुझे लगा कि नहीं नहीं, विश्व को अभी और जिंदा रहने दो, विश्व को अभी खत्म नहीं करना है, और इसलिए तीनों बार विश्व को मैं विनाश के कंठे से वापस लेके आया। एक जॉन फॉस्टर डलेस जैसा जो विदेश मंत्री अमेरिका का है, वो भी इतना गौरव से कह सकता है कि तीन तीन बार मैं विश्व को विनाश के कंठे पर लेके गया। तो इस प्रकार से विनाश की तैयारियां जो है वो तो सब हो चुकी है, बात यही है कि स्थापना की तैयारी कितनी हमारे पास है। तो इसलिए हम जो है हमें अपना पुरुषार्थ करके स्व परिवर्तन के द्वारा जो विश्व परिवर्तन का कार्य करना है उसको देखना है। फिर भी कई लोग पूछते हैं कि चलो बाबा नहीं कहेगा तो क्या आज की दुनिया के जो भी ये जो पामिस्ट्री जो है, हस्तरेखा शास्त्र जो है उसको जानने वाले, या एस्ट्रोनॉमी अर्थात जो ग्रहों के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर जिसको होरोस्कोप कहते हैं, जन्म पत्रिकाएं जो कहते हैं, उनके आधार पर क्या विश्व का विनाश की घड़ियां हम जान सकते हैं? ये एक प्रश्न है। मैंने भी पहले इसके पर काफी चर्चा की हुई थी अज्ञान काल में, मैंने भी एस्ट्रोनॉमी पामिस्ट्री आदि का अभ्यास किया हुआ था, तो मैं भी इस टाइम पर सोच रहा था कि क्या व्यक्तिगत जो भी जन्म पत्रिकाएं होती है उसके द्वारा विश्व का विनाश की बातें जो है उनके जन्म पत्रिकाओं से ये बात मिल सकती है। हमने इसलिए हिरोशिमा और नागासाकी वहां के लोगों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के दो शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, उसके दोनों के ऊपर अमेरिका ने एटम बम फेंका हुआ था, और उसके कारण एटम बम जब डाला गया तो लाखों लोग एक सेकंड में, एक घंटे में मर गए। तो ये प्रश्न ये था कि क्या जो लाख लोग मर गए, समझो एक लाख लोग मर गए मिसाल के तौर पर, तो क्या इन सबके हॉरोस्कोप में ये लिखा हुआ होगा कि ये फलानी तारीख को एक साथ में इतने लाख लोग मर जाएंगे? रिसर्च जब उनके ऊपर हुई, उनके जीवन वृत्तांत के ऊपर और उनके जन्म पत्रिकाओं के ऊपर, तो किसी के भी जन्म पत्रिका में ये नहीं लिखा था कि ये सब इतने समय में एक साथ में मर जाएंगे। कोई 5 साल का मरेगा तो कोई 50 साल का मरेगा, तो कोई 85 वर्ष का भी मर सकता है। ऐसी बात जो है व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत होरोस्कोप में तो लिखी नहीं थी, तो एक साथ में ये कैसे मर सकते, ये कैसे मालूम, ये क्यों मालूम नहीं पड़ा? उसके बारे में कई वैज्ञानिक लोगों ने, मतलब इन बातों की रिसर्च करने वालों ने बताया कि हमारा जो व्यक्तिगत जो होरोस्कोप जो होता है वो उसमें 5 बातों के प्रभाव पड़ता है। एक तो हमारे परिवार व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, तो साथ साथ व्यक्ति के परिवार का भी प्रभाव पड़ सकता है। और एक लेखक ने उसमें बताया हुआ था कि एक व्यक्ति जो है उसका, उसने होरोस्कोप देखा हुआ था, तो उस होरोस्कोप के अंदर उसमें लिखा हुआ था उसके आधार पर कि कम से कम ये व्यक्ति जो है 85 या 90 साल तक जिंदा रहेगा, और जब 55 या 56 वर्ष का हुआ तो अचानक जो है वो भाई जो है उसका हार्ट फेल से मृत्यु हो गया। तो भाई सोचने लगा, उसका जो ज्योतिषी जो था वो सोचने लगा ये भाई मरा क्यों। तो उसने उसके परिवार के लोगों की जन्म पत्रिका देखना शुरू किया, तो उसमें जो उसका लड़का था उसकी पत्रिका में ये आया कि ये जो व्यक्ति जो है, ये जो इतने साल का होगा तब उसका माँ या बाप दोनों में से एक का मृत्यु होना ही चाहिए। तो उसके कारण, उसके बच्चे की जन्म पत्रिका के प्रभाव के कारण उसके बाप का जो है मृत्यु हुआ, ऐसे उसने बताया था। ऐसे ही जो है जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं उस लोकेलिटी के लोगों के कारण, समाज जहाँ रहते हैं उस समाज का भी प्रभाव पड़ता है। उसमें ये भी बात बहुत लंबी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और जिस देश में हम रहते हैं उस देश का भी व्यक्ति के उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज देखिए, अभी अभी आप जानते हैं इराक, ईरान, कुवैत, इन देशों में लड़ाई या युद्ध चल रहे हैं, तो वहाँ के लोग जो है व्यक्तिगत रूप में जो होंगे उनके उसमें जीवन पत्रिकाओं में तो ज्योतिषी की पत्रिकाओं में तो ये बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु उस देश के नेताओं के आधार पर जो कारोबार होता है उसके परिणाम रूप जैसे अटैक अभी हुआ, ईरान के ऊपर अटैक हुआ और अखबारों में ये आया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितना हथियार जो बम आदि जो भी है वो डाले नहीं गए, इनसे ज्यादा ईरान के ऊपर अभी इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलजुल करके डाले। तो ये जो व्यक्तिगत जीवन पत्रिकाओं में ये बात नहीं आएंगी, परंतु उस देश की जो पत्रिकाएं हैं जो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव के कारण कई लोग उसमें मर जाएंगे। और ऐसे ही सबसे बड़े में बड़ा प्रभाव जो है वो होता है विश्व की जन्म पत्रिका बनाने का। और विश्व की जन्म पत्रिका दुनिया वाले नहीं बना सकते हैं, क्योंकि विश्व जो है वो तो परिवर्तित होता रहता है और ये परिवर्तित होता रहता है उसकी तिथि तारीख कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये विश्व की जन्म पत्रिका कहो या जो वो जो है शिव बाबा को ही मालूम पड़ सकती है। और इसलिए शुरुआत में जब हम लोग ज्ञान में शुरुआत में आए तो हम लोगों को ब्रह्मा बाबा टॉपिक भेजते थे कि रविवार को इस टॉपिक पर भाषण कीजिए, तो उसके अंदर बाबा जो है खास करके बाबा को बहुत प्रिय टॉपिक था टाइम बाय द वर्ल्ड क्लॉक, विश्व की घड़ी के मुताबिक क्या समय हुआ है। और आप और जो झाड़ के साथ जो त्रिमूर्ति का पिक्चर जो है उसका जो गोले का पिक्चर है उसके अंदर घड़ी के दो जो है वो कांटे दिखाए हुए हैं और उसके आधार पर बताते हैं कि अभी समय कितना रहा हुआ है। तो ये विश्व की घड़ी और विश्व की घड़ी के आधार पर जो उसका आघात प्रत्याघात और परिवर्तन जो हो सकता है ये बातें दुनिया में और किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि दुनिया तो अंधकार में सोई हुई है। आज भी एक भाई कह रहा था कि हमारे वहां तो अभी भी पंडित विद्वान आदि के कहने पर लोग जो है यही समझते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है। जब कलयुग अभी बच्चा है ऐसा लोग समझते हैं तो इसके कारण क्या हो जाता है, सभी अपने पुरुषार्थ के अंदर या परिवर्तन के लिए अज्ञानी लोग जो है वो अलबेले हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है। तो विश्व की घड़ी में क्या हो रहा है, विश्व के परिवर्तन की बातों में क्या होने वाला है, तो इसके कारण आपको बाहर के साधनों के द्वारा आपको ये तारीख तिथि तारीख मालूम पड़े ये अशक्य है, इम्पॉसिबल है। इसलिए उसका इंतजार औरों के आधार पर ये मालूम पड़े कब होगा कैसे होगा ये बात, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं पड़ा कि शिव बाबा कब मेरे तन में प्रवेश करने वाले हैं, वो अचानक ही हुआ। तो उसी प्रकार से अचानक जैसे शिव बाबा के तन में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा का अवतरण हुआ, उसी प्रकार से ऐसे ही हर बात में विनाश के समय पर भी जो भी बातें होगी वो अचानक ही होंगी। और उस समय पर कैसे होगा कैसे सबको मालूम पड़ेगा, तो हमारी वेदांति बहन जो है उस एक बार अव्यक्त बाप दादा को पूछ रही थी कि बाबा हम तो अफ्रीका में होंगे, हम अफ्रीका में होंगे और हम वहां होंगे, वहां से यहाँ अंतिम समय पर कैसे आएंगे, कैसे हमें मालूम पड़ेगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, जो अभी भी बाबा ने यही बात कही हुई है कि आपका जो है बुद्धि योग जो है जितना निर्मल होगा, जितना एकाग्र चित्त होगा और जितना एक बाप के साथ ही जुटा हुआ होगा, और उतना ही आप जो भी आने वाली बातें जो इसके वाइब्रेशंस जो है उसको आप कैच कर सकेंगे। अगर आपका बुद्धि योग ठीक नहीं होगा, आप जो है आपका बुद्धि योग कहीं और बातों में लटका हुआ होगा, तो बाबा ऊपर से मदद करना चाहेगा तो भी आपको मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका बुद्धि योग जो है और बातों में जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा टेलीफोन जो है बिजी होगा तो और कोई फोन करता होगा तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जितना हमारा बुद्धि योग क्लियर होगा इतना ही आपको बाबा की टचिंग उस समय पर आ सकती है और आप यहाँ पर भारत में आ सकते हैं। ये बात का हमें भी अनुभव है। 1971 में जब हम लोग आप जानते हैं पहली विदेश सेवा के लिए यहाँ से 6 बहन भाई गए, भाइयों में मैं था, जगदीश भाई थे, बहनों में हमारी शील दादी थी, रोजी बहन थी, डॉक्टर निर्मला थी और उषा बहन थे, हम 6 लोग गए हुए थे। तो जब हम गए हुए थे तब बाबा ने यहाँ पर संदेश में कहा था कि आप कोई भी ईश्वरीय सेवा के लिए निकलो तो उसके पहले 3 मिनट बाबा की याद में बैठना और याद में बैठ करके उसके बाद ही सेवा पर निकलना। तो जब हम अमेरिका में थे तो वहां पर अमेरिका में मॉरल रीआर्मामेंट का सेंटर है, एमआरई सेंटर जो है, उसकी जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उसके नजदीक में ही ये सेंटर है, एमआरई सेंटर जो है, उसका हेड ऑफिस वर्जीनिया बे में है। भारत में भी उसकी पंचगिनी में जो महात्मा गांधी का पौत्र है वो चलाता है। तो वहां पर प्रदर्शनी थी, तो प्रदर्शनी करने के लिए हम लोग निकले, तैयार होकर के निकले, लिफ्ट तक पहुंच गए, लिफ्ट में अंदर दाखिल भी हो गए, और अचानक एक को याद आया कि अरे आज तो हम जो है बाबा को याद किए बिना निकले हुए, और बाबा की तो डायरेक्शन है, श्रीमत है कि आपको 3 मिनट बाबा को याद करके ही सेवा पर निकलना है। तो हम सब लिफ्ट से वापस निकल गए और जो फ्लैट में हम रहते थे वहां गए और 3 मिनट बाबा की याद में बैठे। तो जैसे हम याद में बैठे तो शील दादी जो है वो संदेशी भी थी, तो शिव बाबा ने शील दादी की जो रस्सी जो है वो बुद्धि योग की वो खींच ली और 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच गई। तो बाबा ने शील दादी को कहा, देखा बच्ची तुम लोग योग में बैठे इसलिए क्या हुआ, तुम्हारा बुद्धि योग क्लियर हो गया और तुम्हारा बुद्धि योग मेरे साथ लग गया। मैं ऊपर से देख रहा था कि बच्चों ने ये नहीं किया हुआ, मुझे बच्चों को ये बताना है, तो मैं बताऊं कैसे, क्योंकि आपका बुद्धि योग जाने में लटका हुआ था, परंतु अचानक ही आप में से एक को याद आया कि हमने बाबा को याद नहीं किया और आप यहाँ आए और आपका बुद्धि योग क्लियर हो गया और मेरे साथ लग गया, तो मैंने तुम्हारी बुद्धि को रस्सी को खींच लिया। तो कहा बाबा बताओ क्यों आपने, क्या बात थी? तो बाबा ने कहा कि देखो आप लोग जाते हो ये कोई भारत नहीं है कि वहां आपके बहुत जिज्ञासु होंगे, यहाँ तो आप 6 लोग ही है, आप 6 लोग को ही आप ही पूज्य आप ही पुजारी के माफी सब कुछ कर रहे हैं, आपने उद्घाटन के लिए किसी को बुलाया हुआ है, एक सन्यासी को हमने बुलाया था। तो कहा कि उसको बुलाएंगा, बुलाया था, परंतु आके उद्घाटन कैसे करेंगे, जो उद्घाटन करने के लिए रिबिन तो आपने लिया, परंतु काटने के लिए जो कैंची होती है, सीजर जो होती है, वो तो आपने लिया नहीं है, तो वहां पर सीजर के बिना वो उद्घाटन कैसे करेगा। और उसके बाद दीपक जो है, दीपक प्रगटाने के लिए आपने बाकी सब लिया, कैंडल लिया है आदि आदि सब कुछ लिया, परंतु मैच बॉक्स तो आपने लिया नहीं, मैच बॉक्स के बिना देवासली जो आप जानते हैं उसके बिना वो दीपक प्रगटाएगा कैसे, ये 2 बातों को लिए बिना आप जा रहे हो तो काम कैसे होगा। तो इसलिए ये बात मुझे आप बच्चों को टच करनी थी कि आप कातर जो है, कैंची जो है वो लेके जाओ और दीपक जलाने के लिए मैच बॉक्स भी लेके जाओ। तो बाबा ने कहा जाओ अभी जल्दी नीचे जाओ, आपको देरी होती है, ये दोनों बातें लेकर के आप जाओ। तब से हमने अनुभव किया कि ये जो बाबा की बात जो है कि हमारा बुद्धि योग जितना जितना क्लियर होगा उतना ही अंतिम समय की जो घड़ियां जो होंगी उस टाइम पर बाबा की टचिंग होंगी, बाकी नहीं तो हम इंतजार करते रहेंगे कि बाबा हमको याद करो, बाबा हम औरों को याद करें, विनाश को याद करेंगे तो विनाश अपने आप हम सबको याद टचिंग नहीं करा सकता है, परंतु बाबा हम बच्चों को टचिंग करा सकता है, और इसलिए इंतजार नहीं करना चाहिए। मैंने ब्रह्मा बाबा को पूछा हुआ था, बाबा ने उस टाइम पर शुरुआत में 65-66 में बाबा ने कहा था कि विनाश जो है वो 1976 में होगा, 1976 में ऐसे बाबा ने कहा हुआ था। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को सवाल पूछा कि बाबा ये 1976 में विनाश नहीं हो तो उसका उत्तर क्या होगा। बहुत हमने टिपिकल सवाल बाबा को पूछा था और बाबा ने बहुत सुंदर टिपिकल जवाब दिया। बाबा ने कहा बच्चे ये तो जो उस टाइम पर होगा वो उसका उत्तर देंगे ना, 76 में विनाश नहीं होगा तो जो 76 में जो मौजूद होंगे, जो जिंदा होंगे वो जवाब देंगे ना, हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि उसके पहले ही जो बाबा के पास वतन में चले जाए तो हमें तो कोई सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि वतन में तो कोई सवाल पूछने को आएगा नहीं। तो हमने कहा बाबा परंतु, तो बाबा ने कहा वो तो परंतु जो है जो होगा वो सवाल का जवाब देगा, मैं क्यों इसका जवाब दूं। और हमने देखा कि बाबा इस बात के लिए बाबा ने क्या किया, इतना अपना तीव्र पुरुषार्थ किया कि बाबा को 76 तक यह प्रश्न के उत्तर देने के लिए खुद वहां रहे ने अव्यक्त हो गए। 69 में आप सब जानते हैं, तो 69 में वो तो अव्यक्त हो गए, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कोई उनको प्रश्न पूछने वाला रहा ही नहीं। तो उस प्रकार से ऐसी जो बातें जो है हम 2000 या 2001 या 2005 या ऐसी बातों का अगर इंतजार में रहेंगे तो हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, परंतु उसके पहले ही हम तैयार हो जाए तो, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जो है बाबा के, ब्रह्मा बाबा के जीवन में जो है व्यक्तिगत जीवन में 18 जनवरी आई, 69 के 18 जनवरी आई और बाबा अव्यक्त हो गए। इसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में चाहे सारी सृष्टि का परिवर्तन की बात है, वो परिवर्तन सारी सृष्टि का हो या ना हो अलग बात है, कब होगा वो अलग बात है, परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो बाबा ने कहा हुआ है अव्यक्त रूप में, मतलब जो अचानक का ही पेपर आएगा और अचानक के पेपर में पास होने का है, तो ये अचानक का पेपर माना कोई ना कोई तिथि तो आएगी जिस दिन एक सेकंड में एक क्षण में हमारा शरीर छूट सकता है, तो 18 जनवरी तो 25 जनवरी होगा या कोई भी दिन होगा, 365 दिन में से एक दिन तो होगा। तो जब हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर इस प्रकार का परीक्षा का पेपर आ सकता है व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए, चाहे एडवांस पार्टी के रूप में, चाहे जो भी और कोई कुछ भी पार्टी के रूप में जाना हुआ, तो वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो आएगी और उसके लिए हम तैयार हैं। ये प्रश्न हमारे लिए है, सबके लिए, तो इसलिए व्यक्तिगत रूप का तो विनाश का जो है शरीर का, क्योंकि शरीर हमारा सबका अविनाशी नहीं है, शरीर विनाशी है और इसलिए कभी भी एक सेकंड में परीक्षा आ सकती है और एक सेकंड की परीक्षा के अंदर कई लोगों ने ऐसे शरीर छोड़ दिए हुए हैं। तो इसलिए उसके लिए कि हमारे जीवन में चाहे 18 जनवरी आवे या 25 जनवरी आवे या कोई भी जनवरी आवे या कोई भी दिन आवे और अचानक ही हमको यह शरीर छोड़ना पड़े, जैसे हमारे हसमुख भाई अहमदाबाद के, वो तिनसुकिया गए हुए थे ईश्वरीय सेवा अर्थ और तिनसुकिया में जाकर के उनका शरीर अचानक छूट गया, इतने तक उनका आसानी से शरीर छूट गया कि वो जब बाबा के पास पहुंच गए तो और बाबा को कहने लगे, देखो बाबा आप तो हर समय पर संदेशियों को बुलाते हो, आज तो मैं आ गया हूँ। और बाबा से एकदम प्यार से रू रियान करने के बाद बाबा को कहता, अच्छा बाबा जैसे संदेशियां वापस जाती है ऐसे मैं भी वापस जाऊं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम वापस नहीं जा सकते हो, तुम्हारा शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद तुम आए हो, और ये संदेशियां जो है तो उसका शरीर छूटता नहीं, वो बाबा के पास आती है वापस जा सकती है, तुम्हारा शरीर छूट गया है इसलिए तुम वापस उस शरीर में नहीं जा सकते हो। तब हसमुख भाई कहने लगे, अच्छा मेरा शरीर छूट गया है इसलिए मैं आया हूँ क्या? बाबा मैं तो सेवा के लिए तिनसुकिया आया था। हाँ बच्चे तुम सेवा के लिए इधर आया था परंतु यहाँ ही तिनसुकिया में ही तेरा जो शरीर जो उसका छूटने का प्रोग्राम था, उसके प्रोग्राम के मुताबिक तुम्हारा शरीर छूट गया है, तुम वापस नहीं जा सकते हो। तो ऐसे एकदम अचानक इस प्रकार के शरीर छूटने के कार्यक्रम जो है बन सकता है, और इसके लिए क्या हम तैयार हैं? और उसकी तैयारियों के लिए अनेक प्रकार की तैयारियां हमको करनी होंगी। एक तो हमारा पुरुषार्थ जो है उसके अंदर हमको देखना चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आई हुई है। तीन प्रकार का पुरुषार्थ है, कहीं जो है ना पुरुषार्थ में चलते रहते हैं, कहीं पुरुषार्थ जो उसमें दौड़ते रहते हैं, कईयों के पुरुषार्थ में उड़ती कला का पुरुषार्थ है। अभी भी जो इस महीने का ज्ञानामृत जो छपा हुआ है उसमें जगदीश भाई ने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कहीं जो है नए नए अभी आए हुए 8-10 साल से वो समझते हैं कि 50 के कारण 50 वर्ष से पुरुषार्थ में होते हुए भी पुरुषार्थ की गति जो है वो तीव्र नहीं होंगी, तो उनसे जो 10 वर्ष वाला होगा या 8 वर्ष वाला होगा, अभी भी लास्ट में जो बाबा जो आए होली के दिन, उस दिन भी बाबा ने दादी जी को बताया कि माला भी बन रही है, 9 लाख की भी माला बन रही है, तो 108 की भी माला बन रही है, सब प्रकार की मालाएं बन रही है। तो उस प्रकार से सब प्रकार की जब मालाएं बन रही है तो तीव्रता पुरुषार्थ के अंदर जो है जितनी तीव्रता होगी इतनी वो 8 के माला में दाना बन सकता है या 108 के या 16,000 या 9 लाख के इस प्रकार के माला के दाना बन सकता है। तो हमें देखना है कि हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता उसकी गति जो है वो फास्ट हुई या नहीं। कई बार हमको क्या कहा जाता है, जैसे अभी ये बहन ने कहा कि रमेश भाई ज्ञान मार्ग में 40 वर्ष से चलते रहते हैं, ये सर्टिफिकेट मिल गया कि रमेश भाई तो अभी जो है ना वो चलते रहते हैं। हमारा कई बार इस प्रकार का हम ऐसे सर्टिफिकेट सुनते रहते हैं कि हमारी पुरुषार्थ की गति चलने की है या दौड़ने की है या उड़ने की है, और बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बता दिया है पिछले साल बातें करते करते कि अगर पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं लाई हुई है और आपके पुरुषार्थ की गति और प्रगति उड़ने वाली कला या तो दौड़ने वाली कला का नहीं प्रतिबिंब है और आप फिर चलते रहते हैं, तो चलने रहने वाले का पुरुषार्थ जो है उसके आधार पर बाबा ने बताया कि ऐसे बच्चे सिर्फ चलते रहते हैं उनकी गति और प्रगति में तीव्रता नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए ड्रामा के अंदर ये बोर्ड लग गया है कि आप समय तक या समय से पहले अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बाबा ने वार्निंग दे दिया कि आपको अपने पुरुषार्थ की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। एक छोटा सा मिसाल है, यहाँ जितने भी बैठे हुए 95% मैं देख रहा हूँ गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, जिसको कहते हैं ट्रस्टी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। आदर्श गृहस्थ व्यवहार ये बाबा की बहुत बड़ी भारी देन है। अगर गृहस्थ व्यवहार में रह करके 16 गला संपूर्ण बन नहीं सकते, ऐसा बाबा ने आश्वासन नहीं दिया हुआ होता तो हम सबको, जैसे जैन धर्म में है दीक्षा लेनी चाहिए, बौद्ध धर्म में है, ऐसे कई धर्मों में ये माना गया है कि गृहस्थ जीवन वाला जो है मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। बाबा ने ये आश्वासन दिया है, बाबा की ये बहुत बड़ी कृपा हम बच्चों के ऊपर है कि गृहस्थ जीवन में रहने वाले भी अगर तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो मुक्ति जीवन मुक्ति का 16 कला संपूर्णता का पद प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये आदर्श गृहस्थ जीवन जो है उस प्रकार का हमारा जीवन का व्यवहार सेट हुआ है। मैं 69 में कलकत्ते गया था, कलकत्ते से कार लेकर के घूमता घूमता कानपुर आदि सब जगह पर हो करके मुझे बम्बई आना था, 5-6 हफ्ते की ये सफर थी। तो अव्यक्त बाप दादा को मैंने पूछा था कि बाबा मैं इस सफर में सभी सेंटरों पर जाऊंगा तो मुझे सब लोग मिलेंगे तो मैं क्या संदेश दूं सबको। तो बाबा ने कहा कि तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हो तो तुम्हें इस बात की ये प्रश्न पूछने की अथॉरिटी है कि आप बच्चों ने जो वहां रहने वाले जो सेंटर पर आने वाले उनसे पूछिए कि आपका जीवन व्यवहार एक आदर्श ट्रस्टी गृहस्थी के रूप में है। मैंने कहा आदर्श ट्रस्टी गृहस्थी के रूप में किस प्रकार के होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि मैंने बताया हुआ है और आप सब जानते भी है, बाबा ने कहा है 8 घंटा अपनी नींद खाना पीना इन सब बातों के लिए, 8 घंटा लौकिक कारोबार करने के लिए और 8 घंटा ईश्वरीय कमाई करने के लिए, इस प्रकार से 8-8-8 घंटे का विभाजन करने के लिए बाबा ने कहा। और इस प्रकार से इस बाबा की डायरेक्शन के मुताबिक जिनका जीवन गृहस्थ व्यवहार के अंदर चलता होगा वही आदर्श गृहस्थी है या आदर्श ट्रस्टी है। तो मैंने बाबा को पूछा, बाबा ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आज के जमाने में महंगाई बहुत है, जब महंगाई बहुत है तो 8 घंटे की नौकरी या 8 घंटे के कमाई के पुरुषार्थ के आधार पर 1 महीने की कमाई नहीं हो सकती है। मैंने बाबा को हंसी में बताया कि बाबा आप तो कहते हैं सर जो है गल्प वृक्ष और ड्रामा जो है 5-10 वर्ष के बाद रिपीट होता है, परंतु ऐसे गृहस्थियों के जीवन में तो ये जो सृष्टि चक्र जो है वो 1 महीने में रिपीट होता है। तो बाबा ने कहा 1 महीने में कैसे रिपीट होता है। मैंने कहा बाबा ये हम लोगों की प्रैक्टिकल बातें हैं, आपको मैं बताऊं कैसे रिपीट होता है। जो नौकरी करने वाला होता है उसको जो पगार मिलता है, तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, उसका पहला हफ्ता जो है उसके जीवन में सतयुग होता है, दूसरा हफ्ता जो है उसके जीवन में त्रेता युग होता है, तीसरा हफ्ता जो है वो द्वापर युग होता है और चौथा हफ्ता जो है वो कलयुग होता है। तो बाबा ने कहा संगम युग कब होता है। तो मैंने कहा संगम युग जिस दिन तनख्वाह मिलती है ना उस दिन संगम युग का होता है, सुबह एक हिस्सा खाली होता है। देखो आप सबका व्यक्तिगत जीवन की बात मैंने बाबा को बताई, इसलिए आप सबने अप्रूवल की तालियां बजाई। तो मैंने बाबा को कहा कि जिस दिन तनख्वाह मिलता है सुबह एक हिस्सा खाली होता है और शाम को हिस्सा भर जाता है, तो इसलिए पगार का दिन जो है वो संगम युग है। तो बाबा ने कहा ये तो अच्छी बात है इनके जीवन में, तो उनको तो और ही ड्रामा पक्का होना चाहिए। तो मैंने कहा बाबा ये 8 घंटे की कमाई से 1 मास का भी खर्च नहीं निकल सकता, आज महंगाई में खर्च ज्यादा है और कमाई कम होती है, इसलिए 8 घंटे के बदले में 10-12 घंटा काम करना पड़ता है, ओवर टाइम जिसको कहते हैं। तो बाबा ने हंस करके कहा कि ऐसे बच्चों को पूछना और ये आप सबके लिए प्रश्न है। बाबा ने कहा कि 8 घंटे की कमाई से 8 घंटे के पुरुषार्थ से 1 मास की भी कमाई पूरी नहीं हो सकती है। तो आप बच्चों को तो 21 जन्म कहो या 84 जन्मों की कमाई जो भी कहो, ये 84 जन्मों की यहाँ 21 जन्मों की कमाई करनी है तो उसके लिए आप 8 घंटे के बदले में 2-4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे देंगे तो क्या इतने कम पुरुषार्थ के आधार पर जितनी कमाई आपको 21 जन्मों के लिए या 84 जन्मों के लिए, क्योंकि द्वापर युग से भी हम लोग राजा तो बनेंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे, साहूकार बन सकते हैं, अपनी भगत होंगे, अपना गायन और पूजन करने वाले होंगे, तो उस प्रकार से 84 जन्मों में बाबा ने कहा भी है कि 2-3 लास्ट के 2-3 जन्मों में आपको थोड़ा कुछ दुख सहन करना पड़ेगा, बाकी तो सारा ही कल्प जो है आप बच्चे सब सुख में रहते हैं, तो वो सारी कमाई अभी होती है। तो बाबा ने कहा कि जब 2-4 घंटे की ही ईश्वरीय सेवा की कमाई करते हो तो उसके द्वारा आपका जितना भी कमाई के रूप में 84 जन्मों का या 21 जन्मों का जो भी आपका लक्ष्य हो इतनी कमाई हो सकेंगी, तो ऐसे बच्चों को पूछना और इसके आधार पर कहना कि आपके वर्तमान के आधार पर, वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर ऐसा जीवन बनेगा, ऐसा बाबा ने हमको पूछा कहा। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये तो नहीं हो सकता है, तो बाबा ने कहा इसलिए आप सबको कहना कि आदर्श गृहस्थ व्यवहार जो मैंने कहा और जो आप कर रहे हो, परंतु आदर्श व्यवहार गृहस्थ जीवन नहीं है, आप गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहे हो परंतु ये आदर्श गृहस्थ जीवन नहीं है। ऐसे ही एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, साकार बाबा ने, कि अगर कोई भी बच्चा जो है मुझे पूछे कि बाबा वर्तमान के अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर मेरा अगर शरीर छूट जाए तो मेरा क्या पद होगा, ये बाबा बता सकते हैं उनको कि बच्चा तेरा ये पद हो सकता है। तो जब बाबा ने मुरली सुनाई तो उसके बाद मैं बाबा के पास गया, बाबा मैंने कहा आज तो आपके पास पूछने वालों की लाइन लग जाएंगी, आज आपके पास पूछने वालों की लाइन लग जाएंगी कि आपका मतलब उस भाई का या बहन का वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर आज ही अगर उसका शरीर छूट जाए तो उसको क्या पद मिलेगा, उसको जानने को मिल जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, आज आपके पास लाइन लग जाएंगी। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बाबा ने कहा ये तो जो आप बाबा कहते हैं कि गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ये बाबा जानते हैं, और इसलिए वर्तमान की चैलेंज और वर्तमान की वास्तविकता फेस करने की हिम्मत बाबा ने कहा बहुत कम बच्चों में होती, और इसलिए बहुत कम जो है मेरे पास आकर के पूछेंगे कि बाबा अगर मेरा वर्तमान का शरीर, वर्तमान में आज शरीर छूट जाए तो अब तक के पुरुषार्थ के आधार पर क्या पद होगा। वास्तविकता को फेस करने में, वास्तविकता का सामना करने में हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर हमारी व्यक्तिगत जो भी है परिवर्तन की बातें, जो उसके आधार पर हमारा जीवन क्या बन सकता है, इसलिए हम जानते हैं, और इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये कोई इतना मुझे पूछने को नहीं आएंगे, तो ये हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। बाबा ने मुझे एक बार कहा, मैंने कहा बाबा आपने हमारा पुरुषार्थ तो बहुत सहज कर दिया है, आधा पुरुषार्थ तो आपने माफ कर दिया, अगर हम जो है हमारी गलतियां जो है, कमियां जो है, पाप कर्म आदि जो भी है इस जन्म के जो है वो सच्चाई से बाबा के पास बताते हैं, जिसको कन्फेशन कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में भी कन्फेशन के बॉक्स होते हैं और वहां जाकर के लोग कन्फेशंस करते रहते हैं और पश्चाताप के रूप में भी हमारा ये जो है कबूलात कर देते हैं, तो इसके कारण बाबा ने कहा हुआ है कि वो आधा माफ हो जाता है। हमने मम्मा को भी पूछा कि मम्मा हमारे अगर पिछले जन्मों का हमें पाप कर्म याद नहीं है, हम तो सब बताना चाहते हैं, तो आप पिछले जन्मों का हमको याद दिला दो, बाबा दिला दे तो हम वो भी बोल दें तो वो भी माफ हो जाए। तो मम्मा ने कहा नहीं, पिछले जन्मों के बताने की जरूरत नहीं है, बाबा आपको बताएंगे अभी नहीं, परंतु जितनी सच्चाई और सफाई से आपने अपने वर्तमान के अब तक के जीवन के जो भी पाप कर्म आदि जो भी है वो बाबा को बताएंगे, तो सच्चाई और सफाई के कारण बाबा को जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा को तो हमारे 84 जन्मों का पूरा इतिहास मालूम है, परंतु बाबा जानना चाहता है कि आप में सच्चाई और सफाई कहाँ तक है, और इसलिए सच्चाई और सफाई के आधार पर अगर आपने कहा तो बाबा आपके पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब चुप तो माफ कर देगा आधा। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने हमारा जो है आधा पुरुषार्थ तो माफ करवा दिया। बाबा ने कहा बच्चे ये बात गलत है, बच्चे सच्चाई सफाई से वो भी बात जैसे जो मैंने कही वो सच्चाई सफाई से बाबा के आगे भी आकर के अपने जीवन की कई बातें जो है छुपाते रहते हैं, बाबा से क्या छुपा सकते हैं, फिर भी जैसे जो है दुर्योधन की कहानी मुझे याद आ गई कि दुर्योधन जो है उसको अपना शरीर जो है सारा व्रज का बनाना चाहता था ताकि जो है वो युद्ध के अंदर कोई उसको हरा ना सके और मर ना जाए। तो इसलिए उसकी माँ जो है गांधारी जो उसने कहा था कि तुम जो है जैसे जन्म लिया था उस समय पर जिस प्रकार का था कोई भी निवस्त्र था ऐसे तुम मेरे सामने आ जाना, मैं अपनी आंखों के सामने की जो पट्टी जो है उसको उतार दूंगी और तेरे शरीर के ऊपर नजर डालूंगी और मेरी उस नजर के आधार पर मेरी जो मैं देखूंगी उसके आधार पर तुम्हारा शरीर जितना खुला होगा उतना सारा वज्र का बन जाएगा। तो वो उसी हिसाब से उसी धुन में दुर्योधन जो है मिलने के लिए जा रहा था माता जी को। तो इतने में कृष्ण वहां पहुंच गए। कृष्ण ने कहा अरे तुम ऐसा कैसे जाएगा, तुमको थोड़ा तो लज्जा रखना चाहिए, तो इसलिए कम से कम तेरा जो कमर का जो है उसका पोर्शन जो है इतना पोर्शन तो ढक कर रखना चाहिए। तो उसने कहा ये बात तो सही है, ये अच्छा नहीं लगता है मैं एकदम निवस्त्र होकर के माँ के सामने खड़ा रह जाऊं इतना बड़ा होने के बाद, बचपन की तो बात अलग है। तो इसलिए उसने अपने पेट के ऊपर जो है टोवाल आदि कुछ बांध दिया और उस रूप में जाकर के अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। माता ने अपना जो भी पट्टी जो थी आंख की खोल दी और जब उसने देखा तो उसने कहा अरे ये क्यों रख दिया। तो कहा क्यों, तो कहा अभी इतना कवर तुमने कर दिया इसलिए तुम्हारा जो है शरीर इतना पोर्शन ब्रज का नहीं होगा और वहां ही तुमको गदा लगेंगी और तुम मर जाएगा। तो ऐसा ही हमारा भी जीवन दुर्योधन जैसा ही है। बाबा ने तो कहा कि आपके पुरुषार्थ में ये आप कबूलात जब करते हैं उसमें सच्चाई और सफाई ये होगी तो आपका जितना भी विकर्म जो भी है उसका आधा मैं माफ कर सकता हूँ, परंतु इतनी सच्चाई और सफाई जिसको कहते हैं सत्यता, सत्यता के आधार पर अभी तक हमारे में इतनी नैतिक हिम्मत नहीं आई हुई है, ये करुण वास्तविकता है। माफ करना है मैं आपको ये शब्द कह रहा हूँ, कठिन किसी को लगेगा, परंतु ये वास्तविकता है कि हम सत्यता को 100% फेस करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, इतने बहादुर नहीं बने हुए। अगर सच्चाई और सफाई अगर हमारे जीवन में आ जाए तो पुरुषार्थ में तीव्रता सहज रूप में आ सकती है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के पुरुषार्थ जो है उसको तीव्रता में उसका तीव्रता में लाना ही चाहिए। और इसके लिए जो भी बातें जो है जो भी करना है बाबा की बातें जो है अभी अभी साकार बाबा की मुरली जो थी उसमें बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही कि बच्चों को बाकी सब प्रकार का पुरुषार्थ आता है पर पुरुषार्थ में तीव्रता लानी हो तो बच्चों को अपने से और बाबा से बात करना आना चाहिए। ये इस प्रकार की बात साकार मुरली में बहुत सुंदर बात आई हुई थी। और जितना जितना जिसको बाबा से बात करना होगा रूरियान करने की पद्धति और कला सीखी हुई होंगी इतना ही क्या होगा, बाबा से हर बात में हर कदम में श्रीमत ले सकता है। हमने बाबा को एक बार कहा कि बाबा हम आपसे बड़ी बड़ी बातों के लिए पूछे, छोटी छोटी बातों के लिए क्यों पूछे। बाबा ने कहा क्यों, हमने कहा बाबा आप इतने बड़े बाबा हो और आपको लाखों काम होते हैं उसके बीच में हम आपको छोटी छोटी बातों के आधार पर आकर के क्यों पूछे। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बच्चे मैंने कभी कहा ये कहा कि आप बड़ी बड़ी बातों को ही पूछो और छोटी छोटी बातें मुझे नहीं पूछो, मैंने तो ये कहा हुआ है कि बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलो, और मैंने कहा कि मैं इतना बड़ा हूं इसलिए आप मुझे छोटी छोटी बातें नहीं पूछो, मैं तो आपको छोटी छोटी बातों में भी मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हूं परंतु आप नहीं पूछते हो, गलती आपकी है। और बाबा ने ये भी कहा कि छोटी छोटी बातों में ही आपका अटेंशन पूरा नहीं होता है और उसके ही कारण आप समय को बहुत बर्बाद करते हो, बड़ी बड़ी बातों के ऊपर आपका विजय हो गया है आप कर लेंगे, छोटी छोटी बातें एक छोटी इतनी छोटी छोटी बातें होती है इन बातों में ही आपका समय आदि इतना बर्बाद होता है और इसके कारण छोटी छोटी बातों में ही आप श्रीमत पर नहीं चलते, बड़ी बड़ी बातों में तो चलते हो, छोटी छोटी बातों में ही श्रीमत पर आप नहीं चलते हो। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके आधार पर हमें अपने पुरुषार्थ में परिवर्तन करना चाहिए। हमने वो स्पार्क की मीटिंग में ये बताया क्योंकि मनोहर दादी जो आए थे इन्होंने हमारे जो भी एडवांस पार्टी में गए हुए थे उनके पुरुषार्थ की बातें बताई, तो मैंने भी अपना इसके ये टॉपिक पर जो प्रवचन था उसमें बताया कि हमारे जो एडवांस पार्टी में गए हुए हैं जो इस प्रकार से शरीर छोड़ के गए हुए थे उन्होंने समय का इंतजार किया कि विनाश कब होगा क्या होगा कैसे होगा। मैं आपको ऐसा तो मैंने वहां तो बहुतों का अनुभव बताया
यहाँ तो अभी तीन चार
बाबा ने ये भी कहा कि छोटी छोटी बातों में ही आपका अटेंशन पूरा नहीं होता है और उसके ही कारण आप समय को बहुत बर्बाद करते हो। बड़ी बड़ी बातों के ऊपर आपका विजय हो गया है, आप कर लेंगे, तो छोटी छोटी बातें, एक छोटी इतनी छोटी छोटी बातें होती है, इन बातों में ही आपका समय आदि इतना बर्बाद होता है और इसके कारण छोटी छोटी बातों में ही आप श्रीमत पर नहीं चलते, बड़ी बड़ी बातों में तो चलते हो, छोटी छोटी बातों में ही श्रीमत पर आप नहीं चलते हो। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके आधार पर हमें अपने पुरुषार्थ में परिवर्तन करना चाहिए। हमने उस पार्क की मीटिंग में ये बताया, क्योंकि मनोहर दादी जो आए थे, इन्होंने हमारे जो भी एडवांस पार्टी में गए हुए थे उनके पुरुषार्थ की बातें बताई, तो मैंने भी अपना इसके ये टॉपिक पर जो प्रवचन था उसमें बताया कि हमारे जो एडवांस पार्टी में गए हुए हैं, जो इस प्रकार से शरीर छोड़ के गए हुए थे, उन्होंने समय का इंतजार किया कि विनाश कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपको ऐसा तो मैंने वहां तो बहुतों का अनुभव बताया, पर यहाँ तो अभी तीन चार मिनट रही हुई है तो मैं आपको दो तीन का वर्णन कर सकता हूँ। जैसे बाबा की लौकी युगल है जसोदा माता, क्योंकि एक ड्रामा अनुसार एक मेरा एक पार्ट ऐसा रहा हुआ है कि यज्ञ के अंदर जो भी ऐसे निमित्त बड़े बड़े जो भी है महारथी जिन्होंने भी शरीर छोड़ा, उनके अंतिम घड़िया या अंतिम समय के साथ मेरा बहुत ही अच्छा घनिष्ठ संबंध रहा। तो पहला संबंध जो है जसोदा माता के साथ रहा, बम्बई में वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, हरकिशन दास हॉस्पिटल में, और उनको जलोदर कहते हैं, जो पेट में पानी भर जाता है, पेट एकदम बड़ा हो जाता है, पेट में पानी निकालना पड़ता है और काफी शरीर बहुत क्षीण हो गया था, वीक हो गया था, पानी भी नहीं निकल सकता था, बहुत बड़ा पेट हो गया था, पानी बहुत भर गया था और सर्टन डेथ माना मृत्यु है ही है, समय की बात थी। और दूसरे दिन शरीर छूट गया, उसके अगले दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ था हॉस्पिटल में, तो कहते थे रमेश ये खाओ वो खाओ, मैंने कहा माता जी आपकी तबियत का देखो, कहा वो तो तबियत का काम करेगी, मुझे कोई इसकी फिक्र नहीं है। तो हमने देखा कि मरने के शरीर छोड़ने के 24 घंटे के अंदर भी उनको शरीर छूटने वाला है उसको मालूम था, परंतु शरीर छूटने की व्याधि जो भी थी, आदि जो भी था, व्याधि थी, पेट नहीं, इतना भारी था, बैठ भी नहीं सकते थे, तो इतना सब तकलीफ होते हुए भी उनके मुख पर शरीर छूटने की या इस प्रकार की कोई भी डर नहीं था। सबसे बड़े में बड़ी बात तो यही है कि उन्होंने मृत्यु का डर जो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। और हम जो है ना, ये विनाश की बात है, 2000 कब होगा, क्या होगा, ये जब पूछते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम जो है विनाश से डरते हैं, ये परीक्षा जो अंतिम परीक्षा आने वाली है उसको डरते हैं। और परीक्षा से डरते कौन है, जो विद्यार्थी जिनका पुरुषार्थ जो है तेजी वाला नहीं होता है, कई बातों में गलतियां होती रहती है, ऐसे परीक्षा से डरने वाले कि हम फेल हो जाएंगे। जो होशियार विद्यार्थी होता है वो तो परीक्षा से डरता ही नहीं। तो इस प्रकार से मृत्यु का डर जो है हमने देखा जसोदा माता के जीवन में नहीं था। दादा विश्व किशोर जो अपने भाइयों में बाबा का उस जमाने में राइट हैंड थे और काफी हर बात में आगे थे, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध था। हम लोग यहाँ पर आए थे मधुबन में, पांडव भवन जो है वो उनके नाम पर था और उस नाम से यज्ञ के मतलब दादियों के नाम पर ट्रांसफर करने का था, और इसलिए खास आए, उनका ऑपरेशन नक्की था प्रोस्टेट का, तो प्रोस्टेट का नक्की था तो हम यहाँ काम करके बाबा से मिल करके वापस जा रहे थे तो ट्रेन में उन्होंने बताया कि रमेश भाई ये मेरी अंतिम मुलाकात है, मैंने बाबा से मांगा हुआ है कि मेरा शरीर छूट जाए। मैंने कहा क्यों आपने मांगा दादा, कहा कि अभी आप जैसे पढ़े लिखे जो है वहाँ जगदीश भाई है, इधर आप है, ऐसे बहुत लोग जो है सभी भाई है और वो सब पढ़े लिखे आ गए हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था और जितना भी काम मिलता था वो मैं करता था सेवा में, पर तो मुझे लगा कि मेरा पार्ट अभी फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, इसलिए मैंने ही बाबा को कहा बाबा अभी मेरा ये शरीर छूट जाए और मुझे आगे का जो पार्ट जो है एडवांस पार्टी का पार्ट जो है उसके अंदर मुझे पार्ट दो, मैं ये शरीर जो है उसको छोड़ना चाहता हूँ। मैंने बाबा से अपना शरीर छूटने का मांगा हुआ है, तो मैंने विश्व किशोर दादा को कहा दादा ये सब बातें जो कहने में अच्छी है परंतु प्रोस्टेट के ऑपरेशन में किसी का शरीर छूटता नहीं, तो आज की दुनिया में मामूली ऑपरेशन हो गया। तो ऐसे कहकर के मैंने तो उस बात को हल्के रूप में ले लिया। तो जब ऑपरेशन हुआ और तीन चार दिन के बाद जो है पांचवें दिन जो है उनका शरीर छूट गया और उनके बॉडी को जब हम गांधीवी सेवा केंद्र पर लाए तो अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी हुई, और अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी होकर के बाबा ने मेरे सामने दृष्टि देकर के कहा कि देखो ये बच्चा ने तुमको सही कहा था कि उसने इच्छा मृत्यु मांगा कि बाबा मुझे मेरा ये शरीर अभी छोड़ना है, मुझे एडवांस पार्टी का आगे का पार्ट दीजिए, और इसलिए उसका शरीर जो है ऑपरेशन टेबल में ही छूटने वाला था। परंतु जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जो है वो बदनाम ना हो जाए इसलिए बाबा ने उसको 4 दिन का एक्स्ट्रा लाइफ देख करके आज सुबह उसका शरीर जो है वो छुड़वाया। तो इस प्रकार से ऐसे इच्छा मृत्यु के रूप में उन्होंने मांगा कि अच्छा है आने दो, जैसे वो कबीर ने कहा है ना, चतुर अल बेली कर ले श्रृंगार, तुझे साजन के घर जाना है, साजन के घर जाना है। इस प्रकार की तैयारियां जो है बहुत कम लोगों में होती है कि आए विनाश आवे कुछ भी आ जाए, 2001 या 99 में भी क्यों नहीं हो जाता है तो भी हम तैयार है, इस प्रकार की तैयारी नहीं हो सकती है। हमारे पास बॉम्बे में दादी पुष्प शांता थी जिन्होंने भी शरीर 1983 में शरीर छोड़ा, उनके जीवन की भी आपको कहानी सुनाऊं। उन्होंने भी उनको हार्ट अटैक 3-4 बार हो चुका था और अंतिम समय पर जब उनको उस दिन कहा गया रात को कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हुई है आपको हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो उसने कहा कि नहीं मुझे अभी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, मेरा अभी शरीर छूटने वाला है, मैंने बाबा से मांगा है कि बाबा मुझे अभी शरीर छोड़ना है। तो हमारी बहन बड़ी बहन डॉक्टर थी उसने कहा नहीं नहीं नहीं, और बड़ा डॉक्टर जो था आया हुआ था स्पेशलिस्ट हार्ट का, उन्होंने कहा नहीं आप चलिए हॉस्पिटल में, आपको हॉस्पिटल में आराम रहेगा। तो खुद उठ करके बाबा के कमरे में गई और वहां जाकर के 10 मिनट योग करके आई और कहा चलो ठीक है आप लोग फोर्स करते हो तो मैं हॉस्पिटल में आती हूँ, बाकी मेरा ये अंतिम विदाई है, मैं बाबा से अंतिम विदाई लेकर के आई। तो सबने इतना अटेंशन नहीं दिया, हॉस्पिटल में लेके गए और मोहिनी बहन जो है वो सारी रात वो साथ में थी वहां पर, और सुबह उन्होंने स्नान पानी आदि जो भी स्पंज आदि करते हुए कराया और पूछती रही कितना बजा है, 7:45 बजे हुए थे। उन्होंने कहा कि अभी भी मेरा टाइम बाकी है, जाओ मोहिनी तुम औरों की सेवा करके आओ, बाबा का संदेश देके आओ। 10 मिनट में देख करके आई तो कहा अभी भी टाइम बाकी है, क्यों जल्दी आ गई, अभी भी जाओ सेवा करके आओ। ऐसे 10 मिनट 15 मिनट करा करके 8:20 को जब वापस आई तब 8:20 को उन्होंने कहा कि ठीक है अभी मोहिनी तुम सामने खड़ी रहो और बाबा का चित्र मेरे सामने रखो और मैं बाबा का चित्र को बाबा के याद करती करती ये शरीर छोड़ूंगी। और ऐसे कहकर के 8:30 बजे का मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ूंगी, और एग्जैक्ट 8:30 बजे उसने शरीर छोड़ा। जैसे संदेशी जो है वो पुष्प शांता दादी संदेशी थी और संदेशी के रूप में जैसे संदेश देने के लिए या लेने के लिए भोग लेकर के बाबा के पास जाती है, ऐसे ही ये पुराना शरीर छोड़ करके बाबा की गोद में इच्छा मृत्यु के आधार पर एग्जैक्ट कि मुझे 8:30 बजे शरीर छोड़ना है, ऐसे 8:30 बजे शरीर छोड़ करके बाबा के पास गई। तो ऐसे ऐसे उन्हों के जीवन के अंदर ऐसा तीव्र पुरुषार्थ था कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर मृत्यु का डर जो है वो निकाल दिया था, और उसके कारण क्या हो गया, ये अमर हो गए। जब तक जितने भी जिसके जीवन में मृत्यु का और इन प्रकार के भय कहो डर कहो उसके आधार पर जीवन व्यवहार व्यतीत होता रहेगा, और उसमें भी कहा 2000 में क्या होगा, 2001 में क्या होगा, इस प्रकार के भय के आधार पर जो पुरुषार्थ करते रहते हैं या पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं लगते, डर के कारण क्या होता है, डर के कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती, उसके बदली में बेफिक्र बादशाह करके जो भी हो ड्रामा में जो भी हो जो भी मेरा पार्ट होगा मैं उस पार्ट को आराम से आसानी से व्यवहार करता रहूंगा फेस करता रहूंगा, इस प्रकार निडर होकर के निश्चय के बल के आधार पर जो अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ में तीव्रता लाएगा उसको, उसके लिए ये प्रश्न नहीं है कि 2000 में होगा या 1 में होगा क्या होगा, हमको पुरुषार्थ करना चाहिए क्या करना चाहिए, ये पूछ करने की भी उनको जरूरत नहीं है क्योंकि बाबा ने सब बता दिया है। बाबा ने क्या नहीं बताया हुआ, सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ हम जानते हैं, और उसके आधार पर हमारे पुरुषार्थ के अंदर हमको तीव्रता लानी चाहिए। अभी भी बाबा ने जो कहा विधेय मुक्त बनने की बातें जो है कितनी सुंदर बातें हैं, मैंने रामगीता पढ़ी हुई है, रामगीता जो है वो रामायण में आती है जिसमें वशिष्ठ और राम के बीच में लेन देन होती है, जैसे ये कृष्ण गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है, जैसे रामगीता में वशिष्ठ और राम के बीच में है, और राम जो है वशिष्ठ को सवाल पूछते हैं कि विदेह मुक्ति जो है वो प्राप्त करना है और जीवन मुक्ति जो प्राप्त करना है तो कितने जन्मों का पुरुषार्थ चाहिए। तो वशिष्ठ ने बताया हुआ है कि विदेह मुक्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 जन्मों का पुरुषार्थ चाहिए, और जीवन मुक्ति चाहते हैं तो कम से कम 3 जन्मों का पुरुषार्थ चाहिए, तब वो विदेह मुक्ति या जीवन मुक्ति मिल सकती है। 5वीं भूमिका समाधि की जो है उसको प्राप्त करने वाले जो होते हैं वो जीवन मुक्त, और 7वीं समाधि की भूमिका जो प्राप्त करते हैं उसको विदेह मुक्ति कहते हैं, ऐसे राम गीता में वशिष्ठ ने बताया हुआ है। तो इतना विदेह मुक्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 जन्म की पुरुषार्थ की जरूरत है, ऐसा भक्ति मार्ग ने बताया है। उसकी भेंट में आप देख लीजिए ब्रह्मा बाबा ने कितना तीव्र पुरुषार्थ किया। ज्ञान का प्रारंभ 1936-37 से आप गिनती कर लीजिए, और उसके आधार पर 37 से 69 32 वर्ष के पुरुषार्थ के आधार पर ड्रामा की अवधि 5000 वर्ष की पूरी हो समाप्त हो उसके पहले बाबा खुद संपूर्ण बन गए विदेह मुक्ति जीवन मुक्ति, और उसके बाद की विदेह मुक्ति को प्राप्त करके इस सृष्टि के इतिहास में पहला ऐसा पुरुषार्थी है जिन्होंने संपूर्ण परिवर्तन करके संपूर्ण श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य को हासिल कर दिया, प्राप्त कर लिया 32 वर्ष के पुरुषार्थ के आधार पर। तो हमारे पास कितना सुंदर ये जो है बाबा का ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार पर और जिस योग की शक्ति के आधार पर जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं कि कम से कम 5 जन्मों का पुरुषार्थ की जरूरत है, इसके बदले में ब्रह्मा बाबा के जीवन के आधार पर हम सीख सकते हैं कि 32 साल के पुरुषार्थ के आधार पर बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति या कहो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का या तो विश्व के प्रथम नागरिक के रूप में संपूर्ण बनने वाले बन गए। इस प्रकार का ज्ञान का सैंपल कहो बाबा का जीवन हमारे सामने है, हमें और कुछ नहीं करना है। बाबा ने भी कहा अभी जो है ब्रह्मचारी बनिए, ब्रह्मचारी नहीं सिर्फ परंतु ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो कीजिए। एक साधारण सवाल मैं आप सबसे पूछता हूँ, ब्रह्मा बाबा ने अपनी दृष्टि और वृत्ति में कितना परिवर्तन किया और कितनी बड़ी चैलेंज थी उस जमाने में। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले थे, उनको अपनी लौकिक पत्नी अपने बच्चे आदि सब कुछ थे, परंतु बाबा ने ऑर्डर किया कि बच्चा तुम आज से आदि देव बन गए, प्रजापिता ब्रह्मा बन गया, इसलिए तेरा जो है अपने कौटुंबिक जीवन के जो भी साथी है उसके प्रति तेरी दृष्टि बदली हो जानी चाहिए अभी से। अभी तेरी जो पत्नी जो है वो भी तेरी बच्ची है, बच्चे बाकी भी जितने भी बच्चे हैं उसी प्रकार से तेरे शरीर के भी जो लौकिक बच्चे जो है वो भी उस प्रकार से। तो उस प्रकार से इन्होंने अपने दृष्टि और वृत्ति के अंदर परिवर्तन किया, और उसके परिणाम रूप क्या हो गया हमारे बाबा के जीवन के अंदर, मैंने तो कई बार देखा हुआ था, कभी भी ये लौकिक ताकि बांस कहो ये उनके पुरुषार्थ के अंदर कभी भी उनके जीवन व्यवहार से कभी भी दिखाई नहीं पड़ती थी। हम अपने जीवन को देखें, बाबा ने भी कहा हुआ है कि अभी आपका ये 84वां जन्म है, 83वें जन्म के जो भी संबंध है शरीर के आधार पर, चाहे पति का, चाहे पत्नी का, चाहे बच्चों का, चाहे भाई का, चाहे बहन का, माँ बाप आदि के रूप का जो भी संबंध है, उन सभी संबंधों में परिवर्तन होना चाहिए, और आपका एकमात्र संबंध या दूसरा संबंध जो भाई भाई का आत्मा के रूप में एकमात्र संबंध हो सकता है भाई भाई का, नहीं तो दूसरा संबंध है शरीर के रूप में ब्रह्मा के संतान के रूप में, ब्रह्मा कुमार कुमारी के रूप में आपस में भाई बहन का संबंध होना चाहिए, इसके अलावा और कोई प्रकार की दृष्टि वृत्ति या संबंध याद नहीं आना चाहिए। बड़ी दीदी की मैं बात बताऊं, बड़ी दीदी जब दिल्ली में थे रजौरी गार्डन में, तो उनके लौकिक पति ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा टेलीग्राम आया, उसमें लिखा था गोपी का पति ने शरीर छोड़ दिया। तो दीदी जो है सबको बताने लगी गोपी का पति ने शरीर छोड़ दिया, गोपी का पति ने शरीर छोड़ दिया, गोपी का पति ने शरीर छोड़ दिया। उनको ये महसूस भी नहीं होता था कि ये गोपी मैं हूँ और मेरे पति ने शरीर छोड़ा। इतने तक 83वें जन्म के संस्कार कहो, 83 जन्म के संबंध जो है वो भूल गए थे कि 83वें जन्म के आधार पर मैं गोपी हूँ और मेरे लौकिक पति ने शरीर छोड़ दिया है। उस प्रकार का टेलीग्राम मैं खुद पढ़ रही हूँ, परंतु फिर भी उनको वो बात याद नहीं रही कि मेरे पति ने शरीर छोड़ दिया और उसके कारण उसको कुछ दुख हो, कुछ भी नहीं हुआ। जब गौरव ने कहा अरे दीदी ये तो आपके लिए टेलीग्राम है, तो कहा अच्छा ये मेरे लिए, तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जो भी हुआ उसका। इस प्रकार से अपने 85वें जन्म के संस्कार संबंध आदि जो भी है उसको भूलना इतने तक हमने किया है। हम तो और ही वकालत कर लेते हैं, हाँ कोई किसी को क्रोध क्या होता है क्या करे, ये तो हमारा संस्कार है, करते हैं या नहीं? अपने आप से पूछिए, हम अपने पुराने जन्म के संस्कारों को अभी भी उसकी वकालत करते हैं कि बाबा हम क्या करें, हमारा तो स्वभाव है। कई माताएं जो रो लेती है कहते क्या करे, रोना तो हमारा स्वभाव है। भाइयों को कभी क्रोध आ जाता है कहते क्या करे, ये तो हमारा पुराना संस्कार है, मोह ममता आदि के। इस प्रकार से हम अपने कमजोरी के वकील बनते हैं। साइकोलॉजी में कहा हुआ है, बहुत सुंदर एक सिद्धांत है कि इफ यू डिफेंड योर ओन वीकनेसेस देन यू विल नेवर बी एबल टू मास्टर दोज वीकनेसेस। आपके अंदर जो भी कमजोरी है उस कमजोरी के अगर आप वकील बन गए, आपके अंदर जो भी कमजोरी है और उस कमजोरी के आप अगर वकील बन गए और वकील बन करके अपनी कमजोरियों की वकालत करेंगे कि ये तो हो सकता है, हम क्या करें, हमारा ये है, इस प्रकार से हमारा संस्कार है, हमारा स्वभाव है, ये हो गया, सामने वालों ने ऐसा किया इसलिए करना पड़ा, हम क्या करें, सामने वाला ऐसा बोला इसलिए हमको गुस्सा आ गया, ऐसा हो गया, ऐसी ऐसी बातें के आधार पर अगर हम हमारी कमजोरी की वकालत करेंगे तो साइकोलॉजी कहती है कि आप कभी भी आपकी अपनी वह कमजोरी का कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको अपनी कमजोरी जो है आपकी अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो आप कभी उसकी वकालत मत कीजिए, और जो भी बातें हो रही है होने वाली बातें जो भी है उसके आधार पर सच्चाई और सफाई के आधार पर जीवन व्यवहार करके जो भी बाबा की श्रीमत है इन श्रीमतों के आधार पर जो भी अपना कार्य करना चाहिए पुरुषार्थ में तीव्रता लानी चाहिए और बाबा की जो करंट मुरलियां जो है उसके अंदर जो प्रेरणा चाहे साकार चाहे अव्यक्त मुरलियों में जो मिलती है उसके आधार पर उसको जीवन में धारण करने का अगर हम सच्चाई से पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा की मदद से ये छोटी बात है, बाकी तो बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है। जो खर्च पहला विश्व युद्ध के अंदर जितना आर्थिक खर्च हुआ रुपयों मतलब डॉलर आदि का जो खर्च हुआ इनसे ज्यादा खर्च एक छोटी सी गलती के कारण कंप्यूटर के प्रोग्रामों में हो चुकी है जिसके परिणाम रूप बहुत कुछ हो सकता है। मिलिट्री वाले भी कहते हैं कि हमारे कई प्रोग्राम जो है कंप्यूटर बेस्ड बन गए हैं और कंप्यूटर जब बिगड़ जाएगा या कंप्यूटर में गलतियां हो जाएंगी तो हमारे एटम हमारे बम जो है टाइम बम आदि जो भी है फटेंगे, क्या हो सकता है मालूम नहीं है। हवाई जहाज की कंपनियां भी कह रही है कि उस दिनों में हम हवाई जहाज बंद कर देंगे, रेलवे की बुकिंग भी कई कई बातों की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, अनेक प्रकार की समस्याएं एक खाली आर्थिक छोटी सी बात के कारण होने वाली है। पहला और दूसरा विश्व युद्ध अस्त्र शस्त्रों के आधार पर हुआ, परंतु ये आर्थिक समस्याओं के आधार पर जो समस्याएं आने वाली है वो तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा, परंतु ये तो निश्चित है 31 दिसंबर तक क्या होगा। सारी दुनिया के कंपनियां सरकारों ने इसके लिए कानून बनाए हुए है कि मिलेनियम बग जो है उसके ऊपर सबको करना चाहिए परिवर्तन। हमारे देश के अंदर भारत सरकार ने भी ये कानून निकाला हुआ है कि 31 मार्च 1999 के दिवस का जो ऑडिट होगा हिसाब होगा और उसके लिए जो ऑडिटर्स होंगे उनको ऑडिटर्स के साथ साथ ऑडिट सर्टिफिकेट के साथ साथ ये सर्टिफिकेट देना होगा कि ये कंपनी ने मिलेनियम बग जो है Y2K का प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर परिवर्तन करके अपने वहां के जो भी कंप्यूटर है उसमें ये परिवर्तन कर दिया है, उस प्रकार का एक समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और काफी समय से 10-12 साल से सभी कंपनियां आदि के लिए सबको ये मालूम ये समस्या है, तो भी आज के दिन जो है ना 60% कंपनियां हॉस्पिटल सरकारें आदि ने ये प्रोग्राम जो है उसमें परिवर्तन नहीं किया हुआ है। और इसलिए क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर जो है उसके आधार पर 31 दिसंबर 1999 के बाद एक सेकंड के बाद जो पहली जनवरी होगी वो 2000 की नहीं होगी कंप्यूटर के लिए परंतु 1900 की होंगे। 100 वर्ष घड़ी जो है कंप्यूटर जो है पीछे चला जाएगा। हम बच्चों के लिए नहीं होगा, हम बच्चे तो यहाँ बैठे हुए होंगे, बाप दादा जो है 31 दिसंबर को इनवेरिएबली आते हैं और 31 दिसंबर की बाबा की मुरली और बाबा से पहली जनवरी का संदेश केक कटिंग आदि हम करेंगे, पर दुनिया के लिए बहुत बड़ी भारी समस्या आने वाली। मैं आपको एक ही समस्या बता देता हूँ कि ऐसी समस्या आने वाली ऐसी आर्थिक समस्याएं बहुत आएंगी
और उसके परिणाम रूप क्या होगा। जिन्होंने सफल नहीं किया हुआ होगा, जिन्होंने जो सफल किया हुआ नहीं होगा उसके लिए क्या होगा, उनके लिए जो बाबा ने हमारे मम्मा जो है उसको बहुत पसंद था ये, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए, इस प्रकार की होंगी। और ऐसा भी है जितना जल्दी हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना हम जल्दी सफल करेंगे इतना ज्यादा होगा, क्योंकि समय के साथ साथ महंगाई आदि तो बढ़ती रहती है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, माउंट आबू की ही बात बताऊं, 1958-59 में हम लोगों ने बाबा का जो है पोखरान हाउस जो है पांडव भवन वो खरीद किया, 21,000 रुपये में वो खरीद किया, 21,000 रुपये में खरीद किया, और उसमें 1.25 एकड़ जमीन भी आई और पुराना मकान भी आया, सब कुछ आया, और उसके हिसाब से समझे 8,001 गज जमीन आई, तो 8,001 रुपये गज के हिसाब से 8,000 रुपये की जमीन कहो और बाकी का 13,000 रुपये में मकान कहो, इस प्रकार से 21,000 में समझो पांडव भवन खरीद किया, तो 1 रुपये में 1 गज जमीन हो गई। और इसलिए उस समय पर किसी ने बाबा के भंडारी में अपना धन सफल करने के लिए 100 रुपया रखा हुआ होगा, तो 1 रुपये गज के हिसाब से भौतिक दुनिया के हिसाब से 100 गज जमीन जो है उसके पैसे उसने बाबा के भंडारी में जमा किया। आज ऊपर जो है पांडव भवन के नजदीक की जमीन जो है उसमें कम से 8 से 10 साल पहले जब सुखधाम की जमीन हम लोगों ने लिया, मकान लिया, तब 3 लाख रुपये में लिया, 3,000 रुपये गज, तो 100 रुपया भाव था, और आज जो है वहां 3,000 रुपये में 1 गज नहीं मिलती है जमीन। तो इसलिए जब 3,000 रुपये में भी 1 गज जमीन नहीं मिलती है तो 100 रुपया में कितनी जमीन आएंगे। उस जमाने में 1 रुपये गज थी, आज 3,000 रुपये गज, 100 रुपये की कीमत जो है, मूल्य जो है वो घटता रहता है, रुपये की खरीद शक्ति घटती रहती है, उसके कारण जितना घटती रहती है खरीद शक्ति, उसके आधार पर जितना देरी से हम अपने धन को सफल करने का पुरुषार्थ करेंगे इतनी प्राप्तियां कम होंगी। तो उसी हिसाब से हमने पिछले भी ज्ञानामृत में बताया था कि रुपये की क्रय शक्ति जो है, खरीद शक्ति जो है कम होती जाती है। अभी भी भारत सरकार के वित्त मंत्री ने रुपये की खरीद शक्ति में कितना परसेंटेज डाउन हो गया है, कम हो गई है, वो बातें सारी लिखी हुई है। तो उसके आधार पर भी हम सोचे, और उसके आधार पर अगर विनाश के बाद हम सफल करने के लिए निकलेंगे तो बाबा कैसे स्वीकार करेगा। जब अपना ये वर्ल्ड यूनियन स्पिरिचुअल ट्रस्ट बना और मुझे बाबा ने उसका मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया, और ब्रह्मा बाबा ने यहां से एक के बाद इंस्ट्रक्शंस लिखते गए, पहली इंस्ट्रक्शन मुझे ये लिखी कि बच्चा अभी तुमको मैंने लोगों से बाबा के भंडारे के लिए धन लेने की छुट्टी दिया है और तुम जितना चाहे इतना ले सकता है, परंतु एक बात की मैं तुमको राय देता हूं कि बच्चा ध्यान रखना, लेगा तू परंतु रिटर्न मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई दान देता है मैं रसीद देता हूं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि मुझे उसको वापस देने का है, तो बाबा के भंडारे में जमा होता है, बाबा उसका मालिक है, हम तो ट्रस्टी है। तो बाबा ने लिखा कि मेरी जिम्मेदारी का ध्यान रखकर के लेना, इसलिए कम से कम लेना, ऐसा ना हो कि फालतू में तुम धन ले लो और मुझे फालतू में उनको बहुत कुछ रिटर्न करना पड़े। बाबा भी पूर्ण रूप में पक्के अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, तो बाबा भी जानते हैं क्यों फालतू में मैं जो है ना किसी को भी फालतू में दे दूं ज्यादा। अभी भी पिछले टाइम जो है होली के दिन जो बाबा मिल रहे थे हम लोगों को ऊपर, तो बाबा सबको टोली खिला रहे थे, तो फ्रूट जो कांटा जो उसमें फ्रूट दे रहे थे, तो ध्यान रखते थे कि एक कांटे में एक ही फ्रूट का पीस आवे, ज्यादा नहीं आवे, और जब मेरा जो टर्न आया तो मुझे 2 पीस दिया, तो मेरे पीछे में खड़ा था रमेश भाई, बाकी सबको 1 दिया, आपको क्यों 2 दिया। मैंने कहा उसका कारण है, मैंने बाबा को उषा की भी याद दिया है, इसलिए 2 दे रहे, एक मेरा और एक उसका, बाकी बाबा बहुत बहुत ध्यान रख करके करता है काम। तो यही बाबा की बात है कि विनाश के बाद या विनाश के समय पे अंतिम दिनों में आप अपना तन मन धन जो भी है उसको सफल करने के लिए निकलेंगे, नहीं होगा यज्ञ स्वीकार नहीं करेगा, बाबा भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए समय से पहले सावधान होकर के अपने पुरुषार्थ के अंदर परिवर्तन करना चाहिए। और ऐसे भी बाबा ने अभी भी लास्ट मोर्निंग में यही कहा कि अंतिम समय में अगर आप कुछ भी कर लो तो उसका फल इतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, और बहुत समय के अभ्यास होगा तो आप सफल होंगे, नहीं तो आप सफल नहीं हो सकेंगे, ये हकीकत है। तो इसलिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय के अभ्यास और अनुभव चाहिए। बाबा और अन्य धर्म स्थापकों के कार्य में यही जबरदस्त फंडामेंटल फर्क है। यह सूक्ष्म फंडामेंटल फर्क जो है हमारे कई बहनों भाइयों के ध्यान में नहीं है। क्या है कि दुनिया के अन्य धर्म स्थापक, जितने भी अन्य धर्म स्थापक हैं, इन्होंने बाबा ने जो ज्ञान अभी बताया इसके लिए मालूम पड़ा कि वह धर्म स्थापकों ने अपना धर्म स्थापन किया और कार्य अगर आधा भी रह गया, बाकी भी रह गया है, तो वो ही धर्म स्थापक फिर अन्य नाम रूप के आधार पर जन्म लेकर के अपने धर्म की स्थापना और उसके बाद पालना का कार्य कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं भिन्न भिन्न नाम रूप से। तो अन्य धर्म स्थापक जो है उनको अपना कार्य बाद में भी, एक शरीर छूट जाए तो दूसरा शरीर और तीसरा शरीर, चौथा शरीर, इस प्रकार से अपने धर्म का कार्य की और अपने धर्म के लोगों की पालना, वृद्धि आदि के लिए मार्जिन है। बाबा को ये चांस नहीं है। बाबा संगम युग में आते हैं, सतयुग में नहीं आ सकते हैं। आएंगे क्या सतयुग में? बाबा आएंगे? नहीं आएंगे। तो बाबा और ड्रामा को ये देखना का है कि अभी संगम युग में ही हम बच्चों को संपूर्ण बना करके विश्व के कारोबार के लिए लायक बनाना है, जिसको हम मैं कहता हूं डीटीइज्म, दैवी स्वराज्य के कारोबार की सब प्रकार की विधियां, प्रणाली आदि के लिए हमको एक्सपर्ट बनाने हैं, अनुभवी बनाना है। आज कम्युनिज्म देख लीजिए, कम्युनिज्म 1918 या 19 के बाद शुरू हुआ रशिया में और 6-8 साल पहले वो खत्म हो गया, 70 साल तक चला, मुश्किल से ज्यादा चला नहीं। सोशलिज्म जो है, समाजवाद जो है, इंग्लैंड से अंदर शुरुआत हुई और इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने शुरुआत की, लॉर्ड एटली आदि ने जो किया, और उसके बाद 25-30 साल में वो समाजवाद भी कानून के दृष्टिकोण से एक राज्य पद्धति के हिसाब से खत्म हो गई। उसकी भेद में 2500 वर्ष तक अखंड, अटल, निर्विघ्न राज्य सत्ता चलाने का कारोबार हम बच्चों के हाथ में बाबा दे करके, अब बाबा ऊपर परम धाम के अंदर विश्राम करेंगे। तो इसलिए हम बच्चों को संपूर्ण लायक बनाना है और लायक ड्रामा बाबा और हमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा बनेंगे। बाबा की परीक्षाओं में पास होना होगा, ड्रामा की परीक्षाओं में पास होना होगा और ऐसे जो पास होंगे वही विश्व के कारोबार के लिए लायक होंगे। तो ये बाबा के कर्तव्य और दुनिया के अन्य धर्म स्थापकों के कर्तव्य में ये जमीन आसमान का फर्क है। और उस फर्क के आधार पर क्या हो गया, बाबा के जीवन, बाबा हम बच्चों के जीवन में ये परिवर्तन इतना चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन हो कि हम विश्व के कारोबार के लिए लायक बने, उसके लिए अनुभवी बने। अनुभव नहीं होगा तो हम कार्य कैसे कर सकेंगे, नहीं होगा तो गलतियां करते रहेंगे। हमने ज्ञानामृत में इसके लिए लिखा हुआ है कि अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा। जब भारत आजाद हुआ उसके लिए जो ट्रांसफर ऑफ पावर बाय मिडनाइट जो अंग्रेज लोगों ने किताब लिखी हुई है भारत के, बहुत सुंदर किताब है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद हिंदू मुसलमान के राइट्स बहुत हुए और खून की नदियां जो है बहुत बही, तो भारत सरकार की जो प्रधानमंडल जो था, कैबिनेट जो थी, वो चिंतित हो गया कि अभी हम क्या करें, इतने रायट्स हो रहे, इतने मुसलमान यहाँ मर रहे हैं, क्या करें। तो कैबिनेट की मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा, लॉर्ड माउंटबेटन अभी भी भारत का वाइसरॉय को या गवर्नर जनरल के रूप में मौजूद है और उन्होंने इन बातों का अनुभव है, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के सामने युद्ध करने में वो सरसेनापति थे, उनको इस बात का अनुभव, इसलिए हम रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम सारी सत्ता के सूत्र लॉर्ड माउंटबेटन को देते हैं ताकि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंदर जो रायट्स हो रहे हैं वो रायट्स खत्म करने में हमको मदद करे, वो जो मार्गदर्शन देंगे उस प्रकार से हम करेंगे। रेजोल्यूशन पास करके, रेजोल्यूशन लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन के पास जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल गए और जाकर के उन्होंने कहा कि हम आपको सत्ता के सर्व सूत्र देते हैं, सर्व प्रकार की सत्ता आपको देते हैं, आप जैसे कहेंगे ऐसा हम करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा अभी कैसे आप कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता, आप प्रधानमंत्री हैं और ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप करो, आप इस प्रकार की समस्या को दूर करो। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सुंदर एक बात कही कि हमें इस प्रकार के कारोबार करने का अभ्यास नहीं है, अनुभव नहीं है, और हमारे पास अनुभव नहीं है, इसलिए हम ये रायट्स, ये ब्लड शेड आदि जो भी खून की नदियां बह रही है उसको बंद करने में असमर्थ है। तो उन्होंने पूछा, क्यों क्यों आप असमर्थ है? कहा, हमारी सारी उम्र तो जो है भारत को आजादी दिलाने में, सत्याग्रह करने में, जेलों में जाने में, इनमें बीत गई। राज्य कारोबार चलाने का हमारे पास अनुभव नहीं है, इसलिए हम आए हुए। आपके पास अनुभव है, आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छी रीत से ये कारोबार करके जापान के सामने युद्ध करके जापान के सामने विजय प्राप्त किया है। हमको विश्वास है कि आपके पास ये अनुभव के आधार पर आप तुरंत भारत के अंदर जो खून की नदियां बहती है वो दूर हो जाएंगी। ऐसे ही नया विश्व के जब रचना हो जाए और बाबा हमको सत्ता का सूत्र दे दे, जैसे लोगों ने जवाहरलाल नेहरू आदि को दे दिया, पर उनके पास अनुभव नहीं था, वो असफल रहे। ऐसा जब सत्ता का सूत्र हमको सतयुग में मिल जाए, तब बाबा को हम कहे, बाबा हम क्या करें, हमने तो सारी जिंदगी पुरुषार्थ में इन सब बातों में ही बिताई, हमको विश्व का कारोबार करने का अनुभव अभ्यास नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? ये कार्य या इस प्रकार की वकालत हम बाबा के सामने, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने मान लिया और काम किया, चार पांच दिनों के अंदर सारे भारत के अंदर रक्तपात जो है, खून की नदियां बहना बंद हो गया, ये हकीकत है। और तो ऐसा बाबा को हम पैसे कैसे सत्यु में कह देंगे, बाबा हमारे में ताकत नहीं है, आप ही आकर के कारोबार संभालो, बाबा सामने होगा ही नहीं, हम तो परमधाम छोड़ करके नीचू आ गए होंगे, हम किसको कहेंगे और कौन कारोबार संभालेगा? ये वास्तविकता, और इसलिए बाबा इन बातों को ड्रामा भी, बाबा जैसे बाबा ने एक मुरली में बताया है या ज्ञानामृत के किसी एक लिंक में कहा कि कोई मटका भी खरीद करता है ना तो टक टक करके देखता है कि ये मटका जो है वो पानी रखने के लिए उसमें पानी रहेगा या नहीं, उसमें क्षमता है या नहीं, उसमें कोई सुराग है या नहीं। एक मटके के लिए भी इतनी परीक्षा लेते हैं तो विश्व के कारोबार करने के लिए लायक है या नहीं, इसकी परीक्षा बाबा नहीं लेगा क्या? तो इसलिए ऐसी परीक्षाओं के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, बाबा की परीक्षाएं, आप देरी से आए बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा जो है ना टास्क मास्टर था, एकदम टास्क मास्टर, काम हो जाना चाहिए, समय पर होना चाहिए। एक बार मैं मधुबन में आया हुआ था और जगदीश भाई ने कुछ लिख करके भेजा तो मुझे कहा कि आप कल ये पढ़ना और कल मुझे बताना। तो मैंने समझा कल माना सारा दिन कल का होगा, तो दूसरे दिन शाम को तो गया था, दूसरे दिन मुरली के बाद फौरन पूछा कि बच्चा तुमने पढ़ा? मैंने कहा नहीं बाबा। बाबा ने कहा क्यों? मैंने तो कहा था ना कल पढ़ के देना। मैंने कहा मैंने समझा कल माना सारा दिन। बाबा ने कहा नहीं, कल माना सुबह 4 बजे में मुझे देना चाहिए, सारी रात जाग करके आपको पढ़ना चाहिए। कल माना बेफिक्र बादशाह होकर के सारा दिन बैठ करके रख दिया कि ऐसे नहीं चलेगा, लाओ मेरे को, मुझे वापस लाओ, मैं पढ़ूंगा और मैं जवाब बच्चे को दे दूंगा। तो देखिए बाबा की बड़ी बात है। कल माना मैंने समझा 24 घंटा मिल गया दिन में, सारा दिन में कभी भी मैं पढ़ लूंगा, और बाबा इतना टास्क मास्टर था, कहा नहीं सुबह माना, कल माना कल सुबह प्रातः क्लास में के फौरन उसके बाद देना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए रात को भी जाग करके। बॉम्बे में थे कुंज दादी हमारी, जो अभी जो पटना सेंटर की इंचार्ज है वो बॉम्बे में थी, तो बाबा का टेलीग्राम आया कुंज बच्ची को के रीच कानपुर ऑन मंडे। तो उन्होंने शुक्रवार को टेलीग्राम आया, कहा रमेश भाई शुक्रवार शाम को गाड़ी में बैठूंगा, तो या तो सॉरी शनिवार को टेलीग्राम आया, कहा शनिवार रात को मैं गाड़ी में बैठूंगी तो सोमवार सुबह पहुंचूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं उसमें तो लिखा हुआ है कि आप सोमवार को पहुंचो, माना जब भी कानपुर पहुंचो तो आप सोमवार को पहुंचो। मैंने वकालत किया तो कहा दादी ने कहा बाबा के सामने वकालत नहीं चलती है, बाबा ने तो लिखा है कि सोमवार को पहुंचो, माना पहला ही सोमवार को पहुंचना चाहिए, अगर मैं पहले सोमवार को नहीं पहुंची तो बाबा मुझे कहेंगे बच्ची तू फेल हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है, तो मैं तो टिकट का बंदोबस्त करता हूं। कहा टिकट नहीं मिले, रिजर्वेशन नहीं मिले तो बिना रिजर्वेशन भी जाऊंगी, परंतु जाऊंगी, मैं बाबा की निगाहों में फेल होना नहीं चाहती हूं। ऐसी पुरुषार्थ में लगन होनी चाहिए कि हम बाबा की निगाहों में, बाबा की परीक्षाओं में, माया की परीक्षा में और है और बाबा की भी परीक्षाएं और है, तो इस बाबा की परीक्षाओं में भी फेल न हो जाए उसका पूरा पूरा ध्यान हम बच्चों को रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा।
जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अंतिम परीक्षा है, एक सेकंड की परीक्षा होंगी जिसमें चिंदीधारी या बिंदीधारी बन सकते, एक सेकंड की परीक्षा, एक सेकंड में लगाव आदि की बातों में एक सेकंड के अंदर बाबा जज कर लेंगे कि ये बच्चा अभी तक संपूर्ण नहीं बना हुआ है, विश्व महाराजन आदि के बनने के लिए लायक नहीं है। और इसलिए क्या होगा, साधारण पद हो जाएगा। बाबा ने जो एक शब्द कहा वन कल्प कल्पांत की ये बातें हैं। कल्पांत शब्द का दो अर्थ होता है, कल्पांत शब्द का ये दो अर्थ होता है, कल्पांत माना रोना भी होता है। तो ऐसा ना हो जाए कि कल्प के अंत के साथ साथ कल्पांत माना रोना हो जाए, कि कल्प के अंत में अगर हम जितना तीव्र पुरुषार्थ चाहते हैं इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो शायद हमें रोना पड़े। ऐसे रोने की घड़ियां हमारे किसी के ना आए, ऐसी शुभकामना के साथ साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम शांति।